हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो बच्ची एक हल्के नीले रंग का फ्रॉक पहने हुए थी जो कि उसके घुटनों तक आ रहा था। करीब तकरीबन उस बच्ची की उम्र 6 से 7 साल होगी। अमन ने देखा कि वो बच्ची अमन को ही देख रही थी और फिर अमन को देखते देखते अचानक से वो कहीं जाने लगी थी, लेकिन वो जानबूझकर गिरी या फिर गिर गई, जिससे उसके घुटने में चोट लग गई थी और खून निकलना शुरू हो गया था। जैसे ही अमन ने ये देखा, वो पूरी तरह से चौंक गया था कि अचानक से वो बच्ची उसे देख क्यों रही थी और देखकर फिर इस तरह से भागी क्यों और गिर गई तो उसकी चोट कैसे लगी। तभी अमन को अपने पिछले दूसरे जिन्न की याद आई थी कि किस तरह से दूसरे जिन्न ने 21 साल की लड़की को केवल 12-13 साल की लड़की बनने पर ही मजबूर कर दिया था। तो इसीलिए अमन जल्दी से उस लड़की के पीछे गया था। उसने अपने गार्डों को वहीं रहने का इशारा कर दिया था, क्योंकि अमन को सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, वरना उसे सिक्योरिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो कोई आम इंसान तो था नहीं। वेल, जैसे ही अमन ने ये देखा कि उस लड़की को चोट लगी है, तो उसने उसे उठाया था और पूछने लगा था, आखिरकार कौन हो तुम और इस तरह से यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो लड़की हल्का सा रोती रोती बोली थी, अंकल मैं अपनी मम्मा से खो गई हूँ, मेरा घर वहाँ है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे। जैसे ही उसने अमन से ये कहा, अमन चौंक गया। उसे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अमन को किसी का किसी तरह का कोई खौफ नहीं था, तो इसीलिए वो उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा था। और अमन अपने आप पर आने वाले खतरे का आभास हो चुका था कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा खतरा है जो कि उस पर आने वाला है, लेकिन अमन उस खतरे को देखना चाहता था। उसे किसी का किसी तरह का कोई खौफ नहीं था, नहीं उसे डर लग रहा था, और वो अच्छी तरह से जानता था इंसान अगर उससे लड़ते हैं, मरते हैं, पिटते हैं, उस पर गोली चलाते हैं, तो वो आसानी से उनका मुकाबला कर सकता था। और जबकि इंसानों के आक्रमण का उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं होने वाला था, लेकिन अगर कोई राक्षस या दानव उस पर आक्रमण करता है तो उससे भी वो अच्छी तरह से निपट सकता था। तो अमन बेखौफ होकर उस लड़की के साथ जाने लगा था, और साथ ही साथ वो इस बात को भी जानता था कि अगर हो सकता है कि उसका सफ़ेद जिन्नों से यही मिल जाए, उसे इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तभी उस लड़की ने अमन से कहा था कि वो रहा मेरा घर, ऐसा कहकर उसने एक झोपड़ी की ओर इशारा कर दिया था। अमन ने उसे कहा था, ठीक है तुम जाओ अपने घर के अंदर, लेकिन अचानक वो छोटी सी बच्ची जोरों से हंसने लगी थी और हंसते हंसते अचानक वो अपना रूप बदल चुकी थी। इस वक्त अब बड़े ही विशालकाय शरीर के साथ अमन के सामने अगर कोई खड़ा हुआ था तो वो कोई और नहीं बल्कि अक्षत खुराना था। जैसे ही अमन ने अक्षत को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया था और सोचकर कहने लगा था, ये क्या बचकानी हरकत की अक्षत खुराना, अब क्या तुम सीधे सीधे तरीके से जिन महाराज अमन से मुकाबला नहीं कर सकते हो, जो इस तरह से एक बच्चे का रूप लेकर मुझे बहला फैसला कर यहाँ तक ले आए। तभी अक्षत अचानक हंसते हुए चुप हो गया था और कहने लगा था, तुम्हें बहुत घमंड हो गया है जिन महाराज अमन अपनी शक्तियों का, इसीलिए तुम ये जानते हुए भी कि ये बच्ची जिसके बहकावे में तुम यहाँ तक आए हो ये एक जाल है, तो तुम जानबूझकर अपनी शक्ति को आजमाने के लिए यहाँ आ गए। तुम पता है अमन, तुम्हें इस तरह से अपने आप पर यकीन नहीं करना चाहिए था, आज मैं तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी तारा को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा और उसे दुनिया भर की खुशियां दूंगा। जैसे ही अक्षत ने ये कहा, अमन का पारा पूरी तरह से हाई हो गया था, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी बीवी तारा के खिलाफ वो किसी भी तरह का कोई शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक ही अमन ने भी अपना रूप बदलना शुरू कर दिया था, और जिस तरह से अक्षत एक बड़े ही भयानक विशालकाय दानव के रूप में अमन के सामने मौजूद था, ठीक उसी तरह से अमन ने भी एक बड़ा ही खूंखार जिन महाराज का रूप ले लिया था, और वो बड़ा ही विशालकाय जिन बनकर अक्षत के सामने मौजूद था और उसकी ओर देख कर कहने लगा था, तुम्हें सब कुछ कहना था, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी तारा का नाम नहीं लेना चाहिए था, तुमने मेरी बीवी तारा का नाम लेकर अपनी ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें मैंने पहले छोड़ दिया था, इसलिए सिर्फ ये सोचकर कि हो सकता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन नहीं, शायद बिना मरे तुम बाज नहीं आओगे। ऐसा कहकर अमन ने उसके ऊपर आग के शोलों से आक्रमण करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी अचानक अक्षत ने अपने हाथ में लाया हुआ एक तरल पदार्थ अमन के ऊपर फेंक करवा दिया था। अमन अक्षत के इस वार को देख नहीं पाया था, और अचानक ही अमन का जिस्म अपने आप ही एक इंसानी रूप में बदल गया था और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होकर अक्षत के सामने खड़ा हो गया था। अमन काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार उसके साथ ये हुआ क्या है। तभी अक्षत खुराना जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, तुम जानते हो अमन, तुमने आज जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे पास कितनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन तुम अब समय देख लो, इस वक्त क्या समय हो रहा है और आज कौन सा दिन है, और शायद तुम भूल रहे हो, आज तुम चाहकर भी अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज से काली अमावस्या की रात शुरू होने वाली है और आज उसका पहला दिन है, और आज के दिन सभी जिन्नातों की शक्तियां बहुत ही ज्यादा कम होती हैं। इसीलिए तुम ये जानते हुए भी कि ये बच्ची जिसके बहकावे में तुम यहाँ तक आए हो, ये एक जाल है, तो तुम जानबूझकर अपनी शक्ति को आजमाने के लिए यहाँ आ गए। तुम पता है अमन, तुम्हें इस तरह से अपने आप पर यकीन नहीं करना चाहिए था। आज मैं तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी तारा को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा और उसे दुनिया भर की खुशियां दूंगा। जैसे ही अक्षत ने ये कहा, अमन का पारा पूरी तरह से हाई हो गया था, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी बीवी तारा के खिलाफ वो किसी भी तरह का कोई शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अचानक ही अमन ने भी अपना रूप बदलना शुरू कर दिया था, और जिस तरह से अक्षत एक बड़े ही भयानक विशालकाय दानव के रूप में अमन के सामने मौजूद था, ठीक उसी तरह से अमन ने भी एक बड़ा ही खूंखार जिन महाराज का रूप ले लिया था, और वो बड़ा ही विशालकाय जिन बनकर अक्षत के सामने मौजूद था और उसकी ओर देखकर कहने लगा था, तुम्हें सब कुछ कहना था, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी तारा का नाम नहीं लेना चाहिए था। तुमने मेरी बीवी तारा का नाम लेकर अपनी जिंदगी की बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें मैंने पहले छोड़ दिया था, इसलिए सिर्फ ये सोचकर कि हो सकता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन नहीं, शायद बिना मरे तुम बाज नहीं आओगे। ऐसा कहकर अमन ने उसके ऊपर आग के शोलों से आक्रमण करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी अचानक अक्षत ने अपने हाथ में लाया हुआ एक तरल पदार्थ अमन के ऊपर फेंक करवा दिया था। अमन अक्षत के इस वार को देख नहीं पाया था, और अचानक ही अमन का जिस्म अपने आप ही एक इंसानी रूप में बदल गया था, और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होकर अक्षत के सामने खड़ा हो गया था। अमन काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार उसके साथ ये हुआ क्या है। तभी अक्षत खुराना जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, तुम जानते हो अमन, तुमने आज जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे पास कितनी सारी शक्तियां हैं, लेकिन तुम अब समय देख लो, इस वक्त क्या समय हो रहा है और आज कौन सा दिन है, और शायद तुम भूल रहे हो, आज तुम चाहकर भी अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज से काली अमावस्या की रात शुरू होने वाली है और आज उसका पहला दिन है, और आज के दिन सभी जिन्नातों की शक्तियां बहुत ही ज्यादा कम होती हैं। और तुम जानते हो मेरी शक्तियां कम क्यों नहीं हुई हैं, क्योंकि मैं पहले ही एक बलि देकर आ चुका हूं। ऐसा कहकर अक्षत जोरों से हंसने लगा था, और अमन को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसे जब खतरे का आभास हो गया था तो उसे इस तरह से अपनी शक्तियों के घमंड में आगे नहीं आना चाहिए था। आज अमन ने अपनी जिंदगी का एक और पाठ सीख लिया था, और तभी अचानक अक्षत अमन की ओर देखकर कहने लगा था, आज जिन महाराज अमन की जान जाने वाली है और आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, और हाँ अमन, मेरा यकीन मानो, तुम्हें मरने के बाद भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बीवी तारा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर अक्षत एक बार फिर हंसने लगा था, और अब अमन का गुस्से की सीमा पार कर चुकी थी और उसने सोच लिया था। काई अब वो तिलस्मी पत्थर का इस्तेमाल करके आज इस अक्षत खुराना के जीवन का अंत हमेशा हमेशा के लिए कर देगा, क्योंकि भले ही जिन्नातों की शक्तियां कम हो, लेकिन तिलस्मी पत्थर की शक्तियां किसी भी कीमत पर कम नहीं होती हैं। ये बात अक्षत खुराना नहीं जानता था, तो इसीलिए इससे पहले कि अमन अपने तिलस्मी पत्थर को बुलाने के लिए उसके मंत्रों का प्रयोग करता, अचानक से अमन के ऊपर एक बिजली से कड़की थी, और देखते ही देखते अमन बेहोश हो चुका था। जैसे ही अमन बेहोश हुआ, अक्षत हैरान हो गया था और अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखने लगा था, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई दे ही दे रहा था। तभी अचानक अक्षत की नजर अमन के ठीक पीछे खड़ी हुई लड़की पर पड़ी थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काव्या यानी कि सोनल परी थी। फ्लैशबैक। सोनल परी भी हमेशा की तरह अमन के बगीचे में जाने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसे अचानक तारा का आभास हुआ था। तारा ने सोनल से कहा था कि कुछ ना कुछ तो अमन के साथ ऐसा होने वाला है जो कि काफी बड़ा है, तुम्हें इस वक्त अमन की सिक्योरिटी के लिए जाना होगा और उसका ध्यान रखना होगा। सोनल परी बगीचे में से आना तो नहीं चाहती थी,
क्योंकि तारा का हुक्म था तो उसे आना ही था। इसीलिए जैसे ही वो अमन को देखने के लिए अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा वहां आई और अमन को उसने इस तरह से अक्षत के साथ देखा, तो सोनल की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। और सोनल परी ने मन ही मन में सोचा था कि वाकई तारा परी की मोहब्बत में काफी सारी शक्तियां हैं, भले ही वो पृथ्वी लोक में हो या परीलोक में हो। लेकिन उसे अमन पर आई मुसीबत का आभास हो गया था, इसीलिए काव्या खुद अमन की जगह वो अक्षत से झगड़ने के लिए आ गई थी। तभी अक्षत ने अपने जादुई मंत्रों का प्रयोग करते हुए सोनल परी के ऊपर फूंकना शुरू कर दिया था, लेकिन सोनल परी अपनी जादुई छड़ी के द्वारा हर बार उसके वार को काट रही थी। अब तो अक्षत के अंदर का जो दानव था वो बुरी तरह से चिढ़ गया था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मामूली सी लड़की जो उसके सामने खड़ी हुई है वो एक परी निकलेगी और इस तरह से उसकी सारी शक्तियों का मुकाबला करेगी। तभी अचानक अक्षत ने लगातार सोनल परी के ऊपर कितने ही सारे वार कर दिए थे, लेकिन सोनल बड़े ही आसानी से अपनी जादुई छड़ी के द्वारा उसका मुकाबला कर रही थी। और तभी अचानक सोनल परी ने आंखें बंद करके रानी माँ को याद किया था और कहा था कि इस दानव का अंत अब निश्चित है, तो कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जैसे ही उसने रानी माँ से मदद मांगी, रानी माँ ने जल्दी ही सोनल परी की मदद कर दी थी और एक ऐसा फूल सोनम परी के हाथों में था जो कि एकदम काले रंग का था। तब सोनल परी ने उस फूल को अक्षत की ओर फेंकना शुरू कर दिया था और जैसे ही वो फूल अक्षत के जिस्म से टकराया, अचानक से अक्षत और अक्षत के अंदर जो दानव था उन दोनों में एक जंग छिड़ चुकी थी। दानव जोरों से चीखने चिल्लाने लगा था और वहीं अक्षत की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे और वहां से जुड़कर बार बार काव्या यानी कि सोनल परी से बचाई जाने की गुहार लगाने लगा था। तब काव्या सोनल को एहसास हो गया था कि अब धीरे धीरे अक्षत अपने असली रूप में आ रहा है और उसके अंदर का दानव मर रहा है, तो उन दोनों को उस वक्त देखना काफी ज्यादा दर्दमय सा था, क्योंकि एक जिस्म में से एक की मौत हो रही थी और एक जीवित हो रहा था। धीरे धीरे अक्षत खुराना के अंदर जो उस दानव की आत्मा थी वो पूरी जलकर राख हो चुकी थी और जो अक्षत की आत्मा कैद थी, अक्षत की आत्मा जो कैद थी वो भी अब रिहा हो चुकी हुई थी और रिहा होने के बाद सीधा वो अक्षत के जिस्म में प्रवेश कर गई थी और वो दानव की आत्मा पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। तभी सोनल परी भी जल्दी अपने नॉर्मल एक इंसान के वेश में आ गई थी और सबसे पहले सोनल परी ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए अमन जो कि बेहोशी की हालत में था उसे अक्षत से थोड़ी सी दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया था। और तभी उसने काव्या के वेश में आकर जल्दी ही उसने अमन के गार्ड को वहां बुला लिया था और कहने लगी थी, अमन सर को अचानक से चक्कर आ गया है और यहाँ गिरे पड़े हैं, आखिर आप लोगों ने अकेला ही क्यों छोड़ा। जैसे ही सोनल ने ये कहा, अमन की सभी गार्ड्स का हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था। वो पसीने पसीने हो गए थे क्योंकि जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि अमन की ऐसी हालत थी और जल्दी ही वो लोग अमन को उठाकर गाड़ी से हॉस्पिटल की ओर लेकर जाने लगे थे, लेकिन काव्या ने उन्हें रोक दिया था और बोला था कि आप इन्हें सीधे घर लेकर जाइए। और तारा की बात सुनकर और उसके गार्ड जल्दी ही अमन को लेकर उसके घर की ओर रवाना हो चुके थे। तब तक सोनल परी अक्षत व्यक्ति के पास बैठ गई थी। न जाने क्यों अक्षत को देखकर काव्या का दिल बार बार एक अलग ही तरह की फीलिंग से भर रहा था। अक्षत के जिस्म में जिस तरह से दानव की आत्मा जल रही थी, ठीक उसी वक्त काव्या को भी अपने अंदर कुछ दर्द का एहसास हुआ था। काव्या काफी ज्यादा हैरान थी कि अचानक से ये उसे कैसी फीलिंग आ रही थी। तभी अचानक काव्या ने थोड़ा सा आगे बढ़कर अक्षत के गाल को छुआ था और अक्षत जो कि उस वक्त अपनी आत्मा वापस पाने के बाद बेहोश था, अचानक से उसके जिस्म में हलचल सी हुई थी और उसने कहा, आंखें बंद ही काव्या का हाथ पकड़ लिया था और काव्या की गोद में अपना सर रखने की कोशिश करने लगा था। सोनल परी ये समझ चुकी थी कि इस वक्त ये अपने घर का या बेड का समझ रहा है या फिर अपने किसी हमदर्द को अपने पास समझ रहा है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा था। तभी सोनल परी ने भी बदले में अपना दूसरा हाथ उसके सर पर रखकर उसके बालों में घुमाना शुरू कर दिया था और अक्षत एक सुकून की नींद सो गया था। अक्षत को इतने प्यार से सोता हुआ देखकर सोनल परी के होठों पर अपने आप ही एक मुस्कुराहट आ गई थी और जल्दी ही उसने अपने जादू का प्रयोग करते हुए वो अक्षत को पकड़े पकड़े ही गायब होकर सीधा अक्षत के बेडरूम में पहुंच चुकी थी। और अक्षत को वहां अच्छी तरह से लेटने के बाद कुछ देर उसे देखने के बाद सोनल परी वहां से गायब हो गई थी, क्योंकि वो इस तरह से किसी भी इंसान के मुंह में नहीं फंस सकती थी, क्योंकि ये परी लोक के सख्त खिलाफ था। अगर तारा परी यहाँ परी लोक से पृथ्वी लोक पर रह रही थी तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए। तभी क्या सोनल अक्षत की मोहब्बत को स्वीकार कर लेगी? जानने के लिए बने रही दोस्तों।